ओम शांति, ओम शांति। मैं समझती हूँ कि नाश्ता करने के बाद थोड़ा नशा हो सकता है, इसलिए दूसरी बार ओम शांति मैंने आपके नशा उतारने के लिए किया है। इसलिए थोड़ा चेक करते रहना अपनी आंखों को, अपने आप ही हाथ लगाकर कहीं बंद तो नहीं हो गई हैं, और अगर आपको चेक करने पर मालूम पड़े बंद है तो उन्हें खोल लीजिए, क्योंकि दूर से आपकी आंखें मुझे कोई इतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देती जो दूर दूर बैठे हैं कि उनकी बंद है या खुली। इसलिए स्वयं के स्वयं ही मालिक बनकर बैठिएगा। बाकी मुझे ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ प्यारे बाबा के युगल रूप, जो विशेष बाबा के चुने हुए वो रतन हैं, जिनको जग के सामने बाबा दिखाना चाहता है कि घर परिवार में रहते हुए कैसे मेरे बच्चे आग कपूस होने पर भी, जिन्हें आग नहीं लगती और वो अनेकों की लगी हुई आग को बुझाने के निमित्त बन गए हैं। मैं वो समय आपको याद दिलाना चाहती हूँ जब साकार बाबा के होते प्रदर्शनियां हुआ करती थी, और उन प्रदर्शनियों में विशेष रूप से युगलों की फोटो, जिनकी एल्बम तैयार की गई थी, विशेष रूप से दिल्ली में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी, और जिस एग्जीबिशन को देखने के लिए स्वयं साकार बाबा भी उपस्थित हुए और उस प्रदर्शनी को देखने के लिए गए, और ये कहा कि कैसे इस प्रदर्शनी में आप लोगों को समझाते हो मुझे ऐसा ही नया आगंतुक समझकर मुझे मेरी बच्चियां समझाएं। तो हमको याद है उस समय गुलजार दादी जी पूरा ग्रुप लेकर प्यारे बाबा का और साथ दादियां थी कि सारा एग्जीबिशन समझाई। उस समय बाबा ने ये कहा कि बाहर टेबल पर एक बड़ी सी एल्बम बनाकर रख दो, और उस एल्बम में सब युगलों की फोटो होनी चाहिए ताकि आने वालों को ये मालूम पड़े कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्ति का जीवन जीना इस ईश्वरीय यज्ञ में इन्होंने सीखा, और साथ ही इनकी फोटोज फोटो के साथ नाम भी डालो। और बाद में तो बाबा ने कहा कोई ऐसे सिलेक्टेड युगल जिनको आप समझते हो कि अनेक आत्माओं के बंद नेत्रों को खोल सकते हैं, ऐसे युगलों के घर के एड्रेस भी लिख दो ताकि किसी ने उनसे मिल करके पर्सनल गाइडेंस लेनी हो, अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो वह इनसे मुलाकात करके इनके अनुभवों के आधार से वे अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बना सकें। इसलिए आप कभी अपने को साधारण नहीं समझना। हम बाबा के वो सैंपल बच्चे हैं जो विश्व को रोशनी देने वाले प्यारे बाबा के ज्ञान के आधार से प्रवृत्ति में रहकर निवृत्ति का जीवन जीना सीखने वाले ऐसे बाबा के सैंपल बच्चे हैं। जब तक स्वाभिमान नहीं होगा तब तक जीवन में देह अभिमान नहीं जा सकता। देह अभिमान को समाप्त करने का एकमात्र साधन स्वमान की स्थिति है, और मैं आपको उस रूप से भी देख रही हूं कि वो जगती हुई लालटेन है जो आप जग को रोशन करने वाले हैं, آپ نے اللہ اول دین کی کہانی کبھی سنی ہوگی؟ اللہ اول دین کا چراغ اتھوا لالٹین بڑی فیمس ہے. کہتے ہیں ان کا ایک ایسا چراغ تھا, اس چراغ کو ایک لالٹین کا روپ دیا گیا کہ وہ سب کی مراد پوری کر دیتا تھا. لیکن اچانک ایک بار اللہ والدین کا وہ چراغ گم ہو گیا, کوئی اٹھا کر لے گئے. تر اللہ والدین کو ایک سندر یکتی سوجھی اس کھوئے ہوئے چراغ کو پنہ واپس پانے کی. اس سمے انہوں نے گلی گلی محلے محلے میں یہ آواز لگا دی کہ پرانی لالٹین دے دو اور نئی لالٹین لے لو, پرانی لالٹین دے دو اور نئی لالٹین لے لو. آپ سوچئے, بڑا سستا سا سودا ہے کہ پرانی دے کر کے اور نئی لالٹین کو لینا ہے. کہتے ایک بچہ اپنے گھر میں دیکھ رہا تھا, ایک پرانی سی لالٹین پڑی ہے جو پہلے کبھی تھی نہیں. اس نے سوچا ماں کے آنے سے پورو میں یہ پرانی لالٹین دے کر اور نئی لالٹین لے لیتا ہوں. اور اس نے وہ پرانی لالٹین انہیں دے دی اور اس کے ستھان پر نئی لالٹین لے لی. اور وہ پرانی لالٹین وہی لالٹین تھی جو اللہ والدین کی گم ہو گئی تھی, جس کو کھوجنے کے لیے وہ گلی گلی یہ آواز لگا رہے تھے. واسطو میں ایک کہانی بنی ہوئی ہے. دیکھا جائے اس کہانی کو کہ وہ پرماتما جس کو اللہ بھی کہہ دیتے ہیں, جو اول دین نمبر ون پرتھم دھرم کی استھاپنا کرتے ہیں, وہ ہے آدی سناتن دیوی دیوتا دھرم. جن کی ہم بچے وہ لالٹین ہیں جو وشو کو روشنی دینے والے ہیں, لیکن اس اللہ کی لالٹین گم ہو گئی, بہت دور نکل گئی, کہیں کھو گئی. تب اس سرو شکتیوان پیارے پربھو نے یہی آواز لگائی کہ پرانا پن دے دو, نیا پن لے لو, پرانا دیہ کا ویمان دے دو, سندر دیہ کا سومان لے لو, پرانا میں دے دو اور شریشٹھ میں لے لو. اور آج ہمارا سودا ہی کیا ہے کہ اپنے پرانے سنسکاروں کو دینا ہے, پرانے دیہ کے ابھیمان کو دینا ہے, پرانے دھن دولت کا ابھیمان دینا ہے, پرانی شان شوکت اور پد کو دینا ہے, اور نیا اس کے ستھان پر سب کچھ لینا ہے. بابا کہتے ہیں جنہوں نے یہ سودا سویکار کیا ہے وہ ہے میرے برہمن یوگل بچے. اس لیے ایسے یوگلوں کو بہت بہت مبارک ہے کہ جنہوں نے ایشور سے سندر سودا کر کے اپنے جیون کو شریشٹھ بنانے کا سنکلپ کیا ہے. میں ایسا کہوں گی کہ بے حد کا ویراگیہ کس کو کہیں گے. وہ آپ نے بہت پیارے بابا کے مہاواکیہ بھی سنے ہیں اور آپ اس کے وشے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں, لیکن جنہوں نے اپنے جیون سے یہ بے حد کا ویراگیہ کیا ہوگا, ان کے پرشارتھ سے معلوم پڑ جائے گا کہ یہ بے حد کے ویراگی بچے ہیں جنہوں نے حد سے بدھی کا یوگ نکال کر بے حد پیارے پتا اور بے حد پتا دوارا ہونے والی پراپتیوں کو اپنے من میں بسا لیا ہے. उनके पुरुषार्थ की तीव्रता यही होगी, जैसा कि प्रतिदिन प्यारे बाबा बच्चों को बताते हैं कि बच्चे इस अंतिम जन्म में आपको अपने संस्कारों को बदलना है, उन्हें दिव्य बनाना है, अपने स्वभाव को बदलना है, उन्हें श्रेष्ठ बनाना है, पूर्व के किए हुए विकर्मों को विनाश करना है और श्रेष्ठ कर्मों की कमाई 21 जन्मों के लिए जमा करनी है। एक तरफ पुरानापन तजना है, दूसरी तरफ दिव्यता और श्रेष्ठता को अपनाना है। समय बहुत कम है, बहुत कुछ करना है। इस देह अभिमान के बने संस्कारों को तजना है और दैविक गुणों को धारण कर उन संस्कारों को श्रेष्ठ बनाए, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ख्याल रखना। जब तक इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मन का हटाना नहीं श्रेष्ठ हुआ, तब तक मन का लगाना लग नहीं पाएगा। बच्चे, समय बहुत कम है। बाबा विशेष हम बच्चों को आग्रह करते हैं, कम समय होने को ध्यान में रखते हुए ये सोच लो, घर जाने से पहले फरिश्ता बनना होगा। जब तक मनुष्य से फरिश्ता नहीं बने, तब तक आप देवता नहीं बन सकते हो। और फरिश्ता बनने के लिए डबल लाइट अवस्था चाहिए। आप समझ सकते हैं कि छोटी मोटी चिंताएं, फिक्र, कोई थोड़ी बात की उलझन, मन को मायूस कर लेना, जरा सी बात में भय आ जाना, तनाव में स्थिति निर्माण कर लेना, ये वास्तव में देखा जाए तो फरिश्ता बनने से दूर कर देगा। अगर फरिश्ता बनना है तो स्वयं को डबल लाइट बनाकर रखना होगा, पुराने स्वभाव संस्कारों से बचना होगा, दैवी स्वभाव और संस्कारों का एक करंसी को इकट्ठा करना होगा। ख्याल रखना, मैं केवल आत्मा लाइट स्वरूप हूं यही याद नहीं रखना, लेकिन हर प्रकार के बोझों से स्वयं को निवृत्त करते रहना। डबल लाइट बनकर ही आप घर जा सकोगे, इसलिए बाबा हमको विशेष बताते हैं। मैं क्यों कहता हूं कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए। बच्चे, पुरुषार्थ बहुत करना है, मंजिल बड़ी ऊंची है। स्वयं को चेक करो कि मंजिल इतनी ऊंची है, पुरुषार्थ इस लेवल का चल रहा है, तो क्या इसी स्पीड से चलने पर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे? क्या निजी पुरुषार्थ से हम संतुष्ट हैं? क्या हम पुराने संस्कारों को त्यागने के लिए योग लगा रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन 21 जन्मों के लिए जन्म जन्मांतर के दैवी संस्कारों को भी अपने निजी संस्कार बना रहे हैं? इधर अगर पुरानापन समाप्त करना है तो इधर श्रेष्ठता को इतना ही धारण करना है। अपने पुरुषार्थ को देखो तो बाबा के अनुकूल ऐसा लगता है कि समय बड़ा नाजुक है, जिसको बाबा कहते नाजों से चलने का समय नहीं है। रफ्तार पुरुषार्थ की तीव्र होनी चाहिए। जब तक यहाँ से लंगर उठा नहीं तब तक नैया आगे बढ़ नहीं सकती। इसलिए पुरुषार्थ के लिए मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारी रेस स्पिरिट चाहिए। जैसे किसी को रेस के लिए खड़ा कर दिया जाए और रेफरी खड़ा होता है, हाथ में विसल पकड़ लेता है, वो विसल अभी पकड़ता ही है तो जो रेस में खड़े होते हैं वो भाग उठते हैं, हालांकि अभी उसने विसल बजाई नहीं है, लेकिन इतने तैयार होते हैं कि विसल बजे और हम एकदम भाग उठे। बाबा भी हम बच्चों को कहता है वर्तमान समय के पुरुषार्थ को इस कदर तेजी में लाओ जैसे कि आपकी रेस स्पिरिट हो। अब रेस में जो खड़े होते हैं उनका रेफरी की तरफ तो ध्यान होता ही है कि वो विसल को सुनना है, लेकिन साथ ही साथ उनका अटेंशन एक गोल की तरफ होता है जहां उनको पहुंचना है या जहां तक उन्हें हाथ लगाना है। और अगर रेस में भागने वाला दाएं या बाएं देखता है तो कभी रेस में जीत नहीं सकता, क्योंकि उसका एक एक सेकंड भी बहुत वैल्यूएबल होता है, कीमती होता है। वो किसी चलने वाले को, रेस के साथियों को भी नहीं देखता कि मेरा कोई साथी पीछे तो नहीं रह गया, फला साथी तो आगे निकल गया, लेकिन वो एक लक्ष्य को देखता है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़ा तेजी का कदम चलाता है। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं, आप बच्चों में भी रेस स्पिरिट चाहिए। दाएं बाएं नहीं देखो, मान लीजिए आपने किसी से बहुत ही अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन उनका आपके साथ जो व्यवहार है वो उचित व्यवहार नहीं है। आपके मन में अगर ये विचार आता है कि पुनः जब मैं इनके साथ अगर कहीं मिलना पड़ गया तो मैं ऐसा ही व्यवहार करूंगा या करूंगी जैसा व्यवहार इन्होंने मेरे से किया है, नहीं, वो व्यवहार करने वाला भी जा रहा है रेस में, मैं भी जा रहा हूं रेस में, लेकिन मुझे केवल अपने व्यवहार को देखना है। मालूम है जो करेगा सो पाएगा। मैं किसी के रॉन्ग को देख करके अपने राइट को रॉन्ग करने का संकल्प क्यों दे दूं? क्योंकि मैं रेस में हूं, मुझे मंजिल पर पहुंचना है और ऊंचे से ऊंचे पद का अधिकारी बनना है। जब ये मन में संकल्प आता है तो ऐसी रेस स्पिरिट वाला केवल मात्र क्या बाबा ने कहा और क्या मुझे करना है। जैसे हमारी मामा कहा करती थी, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, जैसा हुक्मी हुक्म देगा उस हुक्म के अनुकूल ही हम राह पर चलेंगे, बस वही हमारी राह है और उसी से मंजिल को पा सकेंगे। हम किसी की न सुनते हैं न देखते हैं। कोई अच्छा करता है तो अच्छाई को जीवन में लेने की कोशिश करेंगे, बुराई करता है तो बुराई से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने श्रेष्ठ कर्मों पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। वास्तव में ये बेहद का वैराग्य है। जब तक हमारा लगाव इस साकार संसार में है तब तक इनकी ऊंचाई में हम ऊंचे उठते हैं, इसकी निचाई में हम नीचे हो जाते हैं, जो हमारी वास्तविकता है उससे हम दूर निकल जाते हैं। इसलिए प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते ख्याल रखना, कहां जा रहे हो, किस मंजिल को पाने जा रहे हो। हम सबको कहते हैं इस समय हम कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं। आप विचार कीजिए, एक अपने देश से निकलकर किसी दूसरे देश में अगर जाना हो तो उस देश की डॉक्यूमेंट्स उसके लिए सब तैयार किए जाते हैं, पासपोर्ट अनुकूल होना चाहिए, उस देश की एंट्री का वीजा ठीक होना चाहिए, जो भी उस देश की लॉज हैं उसके अनुकूल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुना देती हूँ, मैं बीच में आ गया कि दुबई में कोई जाता है तो खसखस जो खसखास होती है वो वहां ले जाना बैन है। अब भारत में तो खसखस सर्दी का मौसम आएगा, कई पीस के उसको ठंडाई में डाल के पीते हैं, गर्माई में भी ठंडाई में डालकर पीते हैं, लड्डू बना बना खाते हैं, हलवा बना कर खाते हैं, आम चलता है, लेकिन वहां बैन है। और अगर किसी देश का कोई लॉ है और अगर कोई नागरिक किसी अन्य देश से उस देश में जाता है और उसका लॉ नहीं पालन करता है तो अपने देश की सरकार भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि आपने उस देश का लॉ क्यों तोड़ा है। अभी कुछ समय हुआ ऐसा सुना कि किसी को मालूम नहीं, अनजान था व्यक्ति, वो ले गया खसखस की पुड़िया और जब पकड़ा गया तो उम्र कैद हो गई। आप सोचिए है क्या चीज, लेकिन लॉ तोड़ा है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं आपने सतयुग में जाना है बच्चे, वो तो सतो प्रधान सृष्टि है जिसमें असत का नाम भी नहीं है। और जैसे किसी देश से एक नियम है कि अगर आपके देश का कोई व्यक्ति कोई लॉ तोड़ता है या अपने देश में कोई गलत काम करके किसी अन्य देश में भागता है तो अपने देश की सरकार सब देशों में इत्तला दे देती है कि हमारे देश से इस प्रकार एक व्यक्ति गया है, अगर आपके देश में आए तो इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस उसे पकड़ हमारे देश में उसे वापस पहुंचा दे। आप सोचिए, हम किसी को दुख देते हैं, वो रोता है चिल्लाता है, हमें कोई असर नहीं होता है। हम कहते हैं हमारी आदत है, कोई जरा सा ज्यादा बोले तो हम सहन नहीं कर सकते, हम थप्पड़ मार ही देते हैं, गाली निकाल ही देते हैं। आपने तो गाली निकाल दी, थप्पड़ मार दिया, लेकिन जिसको थप्पड़ मारा उसके हृदय में क्या चल रहा है, और जिसको गाली दी आपकी गाली से उसकी मनोस्थिति का क्या हाल। और आप चले वैकुंठ की तरफ, क्या समझते हैं कि सतयुग के दरबार में ऐसी सृष्टि पर जाने के लिए एंट्री उनको मिल सकती है, क्या वो प्रवेश हो सकते हैं। हम स्वयं स्वयं को चेक करें, हम कहां के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर थोड़े भी स्वभाव और संस्कार इस पुरानी दुनिया के हैं और हम ये कह दें कि भी हमारी आदत है, ये हमारी नेचर है, ये पुराना स्वभाव है, आपका पुराना स्वभाव या पुरानी नेचर जब तक आपका यहां से वैराग्य नहीं आया तब तक पुरानापन आपके जीवन से छूट नहीं सकता, और जब तक ये छूटेगा नहीं तब तक नई दुनिया में आपको प्रवेश मिल नहीं सकता। हमको मालूम है जब हम प्रथम रशिया देश में गए तो उस समय काफी वर्ष पहले की बात है, उस समय गर्बोचर ही प्रेसिडेंट थे और बड़े कड़े लॉज थे, हर एक के डॉक्यूमेंट बहुत अच्छी तरह चेक होते थे, और हमारे सामने ही सामने देखने में आया अगर डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, उनका कोई कागज में थोड़ी कमी है तो उनको वापस अपने देश में भेज दिया जाता था। हमने देखा हमारी अपनी एक बहन लंदन से रशिया में आई और उनको ये मालूम था कि शायद अभी रशिया देश में जाने के लिए यूरोप वालों को वीजा नहीं लेना है, اور وہ بنا ویزا کے آ گئیں. لیکن اس سمے تک یہ لا نہیں تھا, ویزا لینا ہی تھا, ان کو واپس اپنے دیش میں بھیجا گیا. تو بابا بھی ہم بچوں کو کہتا ہے, بچے دھرم راج کی پوری خالی ہے, اس میں جانا پڑے گا. اس لیے بچوں کو بہت دھیان دینا چاہیے, جب جا رہے ہیں نئی سرشٹی میں تو وہاں کے لیے سب لاز پالن کرنے ہوں گے. ہمارا پوتر جیون چاہیے, پوتر آچار چاہیے, پوتر وچار چاہیے, پوتر آہار چاہیے. جب تک آچار آہار ویوہار اور ویاپار سب چیزوں میں ہماری شدھی اور پوترتا نہیں ہوگی, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نئی سرشٹی میں کیسے جائیں گے. اور اگر جانا ہے تو جو بابا نے ہم بچوں کو بتا دیا, سمے پرتی سمے چیک کرتے رہیں. کوئی ایسا سوبھاؤ تو نہیں ہے جو ہمیں نئی سرشٹی میں انٹری نہ ملے. کوئی کہتے ہیں چلو نئی سرشٹی میں نہیں ملے گی, مکتی دھام میں ہی چلے جائیں گے. ارے مکتی دھام بھی تو پوتر دھام ہے, وہاں بھی تو یہاں کا انفیکشن لے کر کوئی نہیں جا سکتا. وہ بھی تو شریشت ساکار سرشٹی ہے, بھلے نراکاری سرشٹی ہے لیکن ہم ساکاری آتماؤں کے لیے وہ ہمارا گھر ہے. پرنتو گھر میں بھی جب تک اس ساکار مرتیو لوک کی سرشٹی کا انفیکشن ہے تب تک ہم اپنے گھر لوٹ نہیں سکتے. تو بابا ہم بچوں کو ہر چیز سپرش کرتا ہے, بچے سمجھ لو. یہ نہ کہو تھوڑا سا ہے, تھوڑا سا ہے, ہے تو صحیح, چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. ہم نے کئی بار دیکھا امریکہ میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ مٹھائی بنا کے جائیں گے تو اس میں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہم ضرور ہے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو مٹھائی لے ہی جائیں گے. میں نے دیکھا ہمارے بیگس میں کتے منہ ڈال ڈال کے سونگ رہے ہیں. ہم نے کہا کتوں کی سونگی ہوئی چیز کھائے گا کون, اور وہ ایسے سونگتے ہیں کہیں کوئی چیز بیچ میں چلی تو نہیں گئی. ہماری دنیا میں کوئی سونگنے والا نہیں ہوگا, لیکن آٹومیٹک پروسیس ہے. اگر وہاں کے انکول ہمارے سوبھاؤ نہیں, سنسکار نہیں, ہمارا آہار نہیں, ہمارے وچار نہیں, ہمارا ویوہار نہیں, انٹری نہیں مل سکتی. اس لیے بابا بچوں کو کہتے ہیں, بچے بہت بڑا پریورتن کرنے کی آوشیکتا ہے. اور بچے ہم کس لیے رکھتے ہیں؟ بچے کا مطلب ہی ہے کہ جو ہمارا ورتمان پرشار چل رہا ہے اور جس منزل کو ہم نے پانا ہے, ہمارے پرشارتھ کی اسپیڈ منزل کو پراپت کرنے کے انکول ہے. اگر اس میں تھوڑی کمی ہے تو ہمیں اپنی اسپیڈ کو بھرنا ہوگا. اور جو ہماری منزل میں جانے کے یوگے سنسکار یا سوبھاؤ نہیں ہے, انہیں چیک کر کے ہمیں چینج کرنا ہوگا. اور کوئی بھی منشیہ اگر اپنے جیون میں پریورتن چاہتے ہیں تو پریورتن کے لیے تین چار کارک ہیں جن کا اٹینشن دینا پڑتا ہے. سب سے پہلے کسی بھی بات کی اچھائی اور برائی, اس کو اچھی طرح سمجھنا, اسے ریئلائز کرنا, محسوس کرنا بالکل ٹھیک ہے, یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے, اس اچھائی کو مجھے دھارن کرنا ہے, اس برائی کو مجھے تجنا ہے. اس میں ڈٹرمنڈ ہو جانا, درڑ پرتیجی ہو جانا, مجھے ایسا کرنا ہے. درڑتا بہت بڑا گن ہے. اگر کسی پریورتن کے لیے ہم سمجھ لیا, ریئلائز کر لیا, درڑتا نہیں ہوگی تو ہمارا ریئلائزیشن بھی ریئلائزیشن نہیں کہلائے گا. ہمیں درڑتا لانی ہوگی. اور درڑتا کے ساتھ یہ ایک سنکلپ ہوگا کہ اب اس مارگ پر چلتے ہوئے وگن اور بادائیں آئیں گی, کئی درد اور دیواریں آئیں گی, لیکن اب مجھے کوئی پرواہ نہیں. मुझे अब इस मंजिल को पाना ही है। हम कहीं रास्ते में कठिनाई आ गई, विघ्न आ गया, कोई बाधा आ गई, तब हम मंजिल से हट गए, नहीं। परिवर्तन अगर लाना है, अच्छाई और बुराई को समझ लीजिए, समझने के बाद अच्छी तरह रियलाइज करने की कोशिश कीजिए, रियलाइज करने के बाद डिटरमिन्ड हो जाइए, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए, और दृढ़ प्रतिज्ञ होने के पश्चात मन में इस बात का संकल्प रख लीजिए, चाहे विघ्न और बाधाएं कितनी दीवारें आ जाएंगी, लेकिन ये मनुष्य इस पथ से टल नहीं सकता, मंजिल पर जाएगा जरूर। जब ये स्थिति हमारी होगी तब हमें परिवर्तन आएगा। हमारा इतिहास भरा हुआ है ऐसे ऐसे मनुष्यों की कहानियों से, जिन्होंने कितना परिवर्तन लाया। बड़ा ज्वलंत उदाहरण है गांधी जी का, जो हर एक जानता है कि कैसे गांधी जी, मैं अभी जब साउथ अफ्रीका में गई तो मैंने देखा वो स्थान बनाया जहां पर गांधी जी को उतार दिया गया, जहां गांधी जी जाकर रहते थे वो भी स्थान बनाया, लेकिन क्या कौन सी बात से उनको देशभक्ति की लहर जागी, जबकि पढ़ने तो वहां गए हुए थे। लेकिन उस समय हुआ जब वो टिकट लेकर के ट्रेन में बैठे हैं, और टिकट दिखाने के बावजूद भी उन्हें ट्रेन से सामान सहित उतार दिया गया, और कई जगहों पर होटलों पर लिखा हुआ था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इस कदर एक गुलाम देश की दशा हो चुकी थी। कहते गांधी जी को उस समय वैराग्य आया, अरे गुलामी ये चीज होती है कि एक चलती ट्रेन में टिकट लेने के बावजूद भी मुझे धक्का देकर उतारा जा रहा है, मैं सचमुच एक गुलाम देश का नागरिक हूं, और इस गुलामी की बेड़ियों को तज करके स्वतंत्रता का संग्राम छेड़कर स्वतंत्र बनकर ही रहना है। ऐसा नहीं कि बापूजी के रास्ते में विघ्न नहीं आए, बाधाएं नहीं आई, बहुत बाधाएं आई, बहुत अगेंस्ट भी हुए। उस समय उन्होंने अपने देश की दशा देखनी चाही। जैसे कहते हैं कि एक जगह पर वो गए और जाकर देखा कि वहां पर बहुत गंदे गंदे कपड़े पहने हुए थे, तो कहा हमारा गांव कैसा लगा, तो बापू जी ने कहा वैसे तो हर हाल में ठीक था, लेकिन लोगों के कपड़े बहुत गंदे थे। तब उत्तर मिला कि घर में दो ही कपड़े हैं, एक पहन के बैठा है, दूसरा पहन के काम पर गया है, वो जब काम से वापस आएगा उसका कपड़ा वो पहनकर अपने काम में जाएगा, जब तक वो मैला पहनकर बैठा रहेगा। तब उन्होंने कहा अरे मेरा भारत, ऐसा निर्धन भारत, ये गुलाम देश के भारत की दशा हो चुकी है। आज हमको भी जब तक बेहद का वैराग्य नहीं आएगा, मैं समझती हूं परिवर्तन आ नहीं सकता। कहां हम दोहरे ताजधारी देव आत्मा थे, सुख और शांति संपन्न जीवन था, लंबी काया थी, निरोगी जीवन जीते थे, आपस में प्यार और प्रेम था, सब एक होकर भाईचारे की भावना थी, ना केवल मानव में लेकिन पशु पक्षियों में भी। प्रकृति भी हमारी गुलाम थी, मनुष्य की आवश्यकता के अनुकूल प्रकृति अपना सीजन बदलती थी, उसी अनुसार उसे सब कुछ मिलता था। सोचिए कैसे देश के हम वासी, और आज हमको रावण ने गुलाम कर लिया, उसकी गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए कहते क्या करें, चाहते नहीं है क्रोध आ जाता है, चाहते नहीं है हाथ उठाना हाथ उठ जाता है, गाली निकालना नहीं चाहते गाली निकल जाती है, कितने गुलाम बन चुके हैं। और आज हमको ये अंदर से वैराग्य नहीं आता कि सचमुच इस गुलामी के जंजीरों से कौन छुड़ाएगा हमको। स्वयं सर्व समर्थ सर्व शक्तिवान प्यारे पिता आए हैं, बच्चे मैं तुझे इस गुलामी से छुड़ाने के लिए आया हूं, तो केवल मात्र संकल्प कर, मुझे अपना जीवन इन विकारों की गुलामी में अब नहीं जीना है। आज हमको याद है, मुझे उस समय का ख्याल आता है जब हम छोटे थे, ज्ञान में आए, किसी को ज्ञान सुनाते थे तो हमको पूछते थे आपका पिक्चर जाने को, होटल में जाके खाने को, फैशन करने को क्या ये मन नहीं करता। तो मैं बड़े आश्चर्य से देखती थी ये क्या कहते हैं, क्योंकि ईश्वर जो हमको आनंद देता है, सुख देता है, प्राप्ति देता है, उस प्राप्ति के सामने तुच्छ सी चीजें ये प्रतीत होती। जिसका मैं एक बार अपने इसी ही क्लास में अनुभव सुना चुकी हूँ, मैं एक बार स्पेन में गई और मुझे उन्होंने कहा कि दीदी स्पेन के लोग बड़ा सुखी जीवन जीते हैं, यहाँ कोई दंगे फसाद नहीं होते, यहाँ के लोग ज्ञान में आते नहीं क्योंकि रात को देर तक क्लबों में जाते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, फिर अपने काम में जाते हैं। अब ना सुबह इनके लिए क्लासेस कर सकते हैं, ना रात को कर सकते हैं, कौन से टाइम इनको ज्ञान सुनाएं। ये अक्षर सुनते ही मुझे आया कि ये जो कह रहे हैं कि यहाँ के लोग बड़े सुखी हैं और बड़े आनंद का जीवन जीते हैं, रात को क्लबों में टाइम लगाते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, अंदर से इतना जोर से विचार आया कि एक बड़ा फंक्शन आज रखो, मैं देखती हूँ आते हैं कि नहीं लोग आते। और सचमुच उस दिन इतने ज्यादा लोग आए कि उनका हॉल भर गया, दो कमरे उनके साथ थे वो भर गए, स्पेशल माइक का उन्होंने इंतजाम सब जगह स्पीकर का रखा ताकि सब सुन सके। और जब लोगों से बातचीत हुई तो पता चला कि वास्तव में हम कौन कहते हैं हम सुखी और शांत हैं। सत्यता है, आज कोई मनुष्य ऐश्वर्य के साधनों में जाता है, डांस करता है, शराब पीता है, गैम्बलिंग करता है और हम समझे बहुत धनाढ्य और सुखी है, उसके पास सच्चा सुख नहीं है, उसके पास सच्ची शांति नहीं है, उसको सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है, वो इन प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए झूठे साधनों में लिपायमान होता है और वो समझता है कि शायद मुझे यहाँ से कुछ मिल जाएगा। और हम समझते हैं कि इन साधनों में कुछ नहीं रखा है। ये इंद्रियों के सुखों में आत्मा तब तक जाती है जब तक उसे अतीन्द्रिय सुख प्रभु की प्राप्ति नहीं होती और ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति नहीं। और जब ईश्वर का आनंद सुख सही रूप से मिलने लग जाता है, कोई यहाँ आने वाले भी कई कहते हैं खाना पीना जरा शुद्ध नहीं हो पा रहा, थोड़े संस्कारों में इतना परिवर्तन नहीं आ रहा, थोड़ी ऐसी वैसी जगह घूमने फिरने का जरा ज्यादा ही मन होता है, बड़ा स्पष्ट होता है इन्हें ईश्वरीय सुख का अनुभव नहीं हुआ है। ईश्वरीय आनंद क्या चीज होता है ये इनको सुख अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए ये आर्टिफिशियल साधनों से अपने सुख और शांति को बनाए रखते हैं। और आज धन धान्य से संपन्न मनुष्य सुखी होता तो नकली साधनों में नहीं भागता, वो नकली साधनों में जाता है, उन साधनों के द्वारा वो शक्ति शांति आनंद लेना चाहता है, जबकि उनमें शांति आनंद प्रेम रखा नहीं है। वो तो आत्मा का स्वधर्म है, ये तो आत्मा का मूल स्वभाव है। कितना प्यारा बाबा हमको सरल बातें बताता है, बच्चे तू देह से न्यारी, आत्म स्थिति में आछा, तुझ आत्मा के पास बहुत खजाना भरा हुआ है, तू उस खजाने का अनुभव कर। तू देह में ज्यादा रहता है, इंद्रियां तुझे नचाती हैं, कभी जीवा रस की तरफ जाता है, कभी कम रस की तरफ जाता है, कभी इंद्रियों के अन्य इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है और फिर कहता है क्या करें, मन तो चला जाता है, दुनिया ने कह दिया मन बड़ा पापी है, हम कहते हैं नहीं, ये मन पापी नहीं है, प्रभु के साथ संबंध का सही अनुभव नहीं हुआ है। सत्य ज्ञान को जो बाबा ने हमको दो शब्द सत्य कहे, मैं सत्य हूं और तू सत्य है, बच्चे तो अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जा और अपने स्वमान और अपने स्वरूप की अनुभूति में आ जा, जो तेरी इंद्रियां तुझे लुपाए मान करती हैं, अनेक तरफ ले जाती हैं, तेरी इंद्रियां तेरे कंट्रोल हो जाएंगी। बेहद का वैराग्य का मतलब ये नहीं हम यहाँ ना जाए वहां ना जाए, ना जाए नहीं, ईश्वरीय प्राप्तियों को प्राप्त करें, और जितना ईश्वरीय सुख और ईश्वरीय आनंद आत्मा लेने लगती है, ये इंद्रियों की तरफ से स्वतः ही मन हटना शुरू हो जाता है, मन को हटाना नहीं पड़ता है। दुनियावी रूप में हम सुनते थे कि बुल्ले शाह प्रभु का क्या पाना, इधर से हटाओ और इधर लगाना, समझते थे कुछ होगा, हो सकता भक्ति में पता नहीं उसके क्या अर्थ बताते होंगे। अभी हम देखते हैं देह और इंद्रियों से हट जा, अपने स्वरूप और अपने स्वमान में आ जा। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं अगर आपको संपन्न बनना है तो कोई आपको ये कहता है कि भई आपने जो ये बोला ये ठीक नहीं बोला, आप उसे सिद्ध करने की कोशिश ना कीजिए। इसलिए सिद्ध करते हैं कि इस बात के कहने से इनको मेरा बुरा इंप्रेशन हो जाएगा, इस इंप्रेशन को ठीक करने के लिए आप सिद्ध करते हो कि मैंने इसलिए नहीं बोला इसलिए बोला, मैंने उस लिए नहीं बोला उस लिए बोला, ये गोलमाल नहीं कीजिए। अगर समझते हैं राइट है, मेरे मुख से ये बोल निकल गया, और अगर किसी ने मुझे उंगली करके ये कह दिया कि ऐसा बोल आपने कह दिया, तो आप फौरन सॉरी कर दो और ये सोचिए मुझे अपना सुधार करना है। मैं ऐसा समझती कोई भी अपने निजी पुरुषार्थ से परिवर्तित नहीं हो सकता है। हमारी क्लासेस के हमारे भाई बहन, हमारे बड़े, हमारे निमित्त बने हुए, ये हमारे साथ सहायक और सहयोगी हैं जो हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसी एक ने मेरी गलती की तरफ इशारा किया, मैं उनकी चार गलतियां उनके सामने बताना शुरू कर दूं, किस लिए? कि अपनी गलती को छिपाने के लिए। अगर आज आप अपनी गलती किसी की गलतियों को बताकर छिपा देंगे, कल आपकी गलती दुगनी होकर बाहर निकलेगी, आपका परिवर्तन तो नहीं होगा। अगर मुझे सचमुच अपना परिवर्तन करना है तो मेरा परिवर्तन मेरे निजी पुरुषार्थ से नहीं हो सकता है, अनेकों के पुरुषार्थ के सहयोग से मैं अपने जीवन को परिवर्तित कर सकती हूँ। इसलिए अपना इंप्रेशन बनाने की हम कोशिश ना करें, और ज्यादातर अगर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो जैसे हमारी मामा कहा करते थे, एक बार अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती को रिपीट ना होने दो। अगर वो गलती बार बार रिपीट होगी वो स्वभाव बन जाएगा, और धीरे धीरे वो स्वभाव आपकी नेचर बन जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि ये गलती नहीं है, ये तो हो ही जाया करता है। इसलिए किसी भी गलती को रिपीट ना होने दीजिए, उस गलती को देर एंड देन तभी उसको रियलाइज करके उसे खत्म करने की कोशिश करें। तो प्यारे बाबा जहां हमारे सुप्रीम टीचर हैं, वहां हमारे गाइड भी हैं, वो हमको गाइड करते हैं। वो हमेशा कहते हैं अगर मान लीजिए आपकी तरफ कोई इशारा करके ये कहता है कि आप गलत हो, तो थोड़ा अंतर्मुखी बन जाओ, क्योंकि बाहर मुखी बनने से ہمارا ہاتھ باہر ہے، اشارہ باہر بہت جاتا ہے، کان باہر ہے، باہر کی باتیں بہت سنتے ہیں، آنکھیں باہر ہیں، باہر والوں کو دیکھتے ہیں، کان باہر ہے، باہر والوں کو سنتے بولتے دیکھتے، تو اندریوں کو باہر کی طرف رکھا ہوا ہے، ہم اندر کی تیور پرشات میں نہیں جا سکتے۔ اگر اپنے پرشات کو تیور کرنا ہے تو انتر مکھی بننے کی بہت آوشیکتا ہے، بار بار اپنے اندر کو دیکھیں، میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، اپنے کو دیکھیں میری کتنی ستو پردھانتا ہے، اپنے سے بات کر کے پوچھئے میرا پریورتن کتنا آیا ہے، اپنے مکھ سے پوچھئے کہ میرا ان اندریوں پر، مکھ اندری پر کتنا کنٹرول ہوا ہے، کیونکہ مجھے اپنا پریورتن کرنا ہے۔ نہیں تو ہم اوروں کی طرف انگلی کرتے، فلاں بھی تو ایسے کرتے ہیں، ہم نے کیا تو کیا ہوا، وہ بھی تو ایسا بولتے ہیں، ہم نے بولا تو کیا ہوا۔ بابا ہم بچوں کو کہتے ہیں کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا، آپ اپنے لکش کے ساتھ اپنے کو کمپیئر کرتے رہنا، لکش کیا ہے اور میرے لکشن کیا ہے۔ تو میں ایسا سمجھتی ہوں ویراگیہ کا مطلب ہماری چیشتا کا جیون جاگرت ہوتا جائے، اور جو دیہ اور دیہ کی اندریوں کی طرف لگاؤ اور جھکاؤ ہے، جو پرانے سنسکار اور سوبھاؤ ہیں، ان سے ہمارا ویراگیہ ہوتا جائے، اور جتنا جتنا آتما اپنے سومان میں اور اپنے سوروپ میں رہتی ہے، اتنا اتنا آتما اپنا ستیہ سکھ کا انبھو کرتی ہے، اندریوں کے سکھوں سے اوپر اٹھتی چلی جاتی۔ آج کہیں بھی جائیں، مجھے یاد آتا ہے ایک جگہ پر گلزار دادی جی گئے تو انہوں نے کہا، دادی آپ کئی بار اس دیش میں آئے لیکن آپ نے کبھی اس سینٹر سے باہر نکل کے ہی نہیں دیکھا، آپ کو دیکھو تو صحیح یہاں کی دنیا کیسی ہے۔ تب دادی نے کہا، جس نے وہ دنیا دیکھ لی وہ اس دنیا کو کیا دیکھ کے کرے گا۔ تو دادی اپنا انبھو سنا رہے تھے، کہا مجھے ایک بار بڑا مجبور کر کے کہ نہیں دادی، ایک جگہ آپ کو دکھانی ہے، آپ دیکھیے صحیح، ایک دیوی ہے، اس کی مورتی دکھانی، اور سبھی کہیں ایک بار دیکھو ایک بار دیکھو۔ تو دادی نے کہا چلو مورتی دیکھنے چلتی۔ تو دادی نے کہا جب اس مورتی کو میں نے دیکھا، سچ مچ اس مورتی کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی، ایسی سندر مسکراہٹ تھی کہ اس کو دیکھتے ہی اپنے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اور یہ مسکراہٹ براہمن سمجھ سکتے ہیں، دنیا نہیں سمجھ سکتی ہے۔ یہ مسکراہٹ کا درشیہ دادی سنا رہے تھے، مجھے ایسا لگا کہ ایشوری آنند کی یہ مسکراہٹ ہے۔ کیول ماتر کا ایک مورتی میں نے ضرور دیکھی، باقی میں نے کچھ نہیں دیکھا، کیونکہ آتما کو جب اپنی آنترک خوشی مل جاتی ہے، آنترک پراپتی ہوتی ہے، تو اسے باہر چیزیں، ان سے ویراگیہ دلایا نہیں جاتا، ویراگیہ آ نہیں جاتا، من شریشٹ طرف لگ جاتا ہے۔ اور جب من ہمارا شریشٹا کی طرف لگا نہیں ہوا، کبھی مول وطن کی سیر تو کبھی سوکشم وطن کی سیر، کبھی پیارے بابا کے ساتھ وشو بھرمن کی سیر، کچھ اگر کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ویراگیہ لانے کی آوشیکتا نہیں رہے۔ اس لیے پیارے بابا جو ہم بچوں کو کہتے ہیں، ہم اپنے جیون میں ان چیزوں کو اتنا دھارن کریں کہ بابا ایسا دیکھ کر کہے کہ وہاں میری وہ گم ہوئی لالٹن جو مجھے مل گئی، یہ ہے جگ کو روشن کرنے والی لالٹن، یہ ہے جگ کو وردان دینے والی لالٹن۔ اس لیے میں آپ یوگلوں کو دیکھ کر ایسا ہی کہوں گی کہ آپ بابا کے وہ سیمپل رتن ہیں جن کا جیون سارے جگ کو روشن کرنے والا ہے، اور جن کا جیون انیک آتماؤں کو پریرت کر उन्हें नई दुनिया की तरफ प्रेरणा देने वाला है, ऐसा समझते हुए शुभ भावनाओं से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अभी हम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज क्लास कराने के लिए शीलू बहन जी को ऊपर से आना था, पहले मुझे पीछे आना था, लेकिन वो योग शिविर आदि भी चल रहे हैं, उनके क्लासेस में व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए, तभी वो आएंगे। जब तक वो आए तब तक हम अपने प्यारे बाबा का अनुभव करेंगे। अब बाबा का अनुभव करने के लिए मैं आपको कुछ सुनाती रहूंगी, जिससे आप बड़े सहज रूप से, सरल रूप से उनसे मन लगा सको, क्योंकि बाबा ने हमें हमारा स्वरूप बड़ा स्पष्ट बताया। बच्चे, ये तन, ये तो तेरा नाशवान चोला है, और तू चोले का स्वामी या चोले का मालिक है। तो हम सब मालिक बन करके, चोले के गुलाम बनकर नहीं, इन कर्म इंद्रियों के स्वामी बन करके, मालिक बनकर अपने ब्रकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान होने की बहुत आवश्यकता है। सभी सब तरफ से मन को हटाओ, अभी जिसने उठना है उठ जाए, इधर उधर ना देखना, केवल मात्र अपने स्वरूप को देखना। और मैं आपको बता देना चाहती हूं कि मैं जो आपको देखने लिए कहूंगी वो आप देख कई बार नहीं पाओगे। कारण क्या है कि हमने बहुत से ऐसी मन में बातें रखी हुई हैं, किसी का स्वभाव, किसी का व्यवहार, किसी का पदार्थ, कोई दुनिया का आकर्षण, जब वो मन में हमने बिठाया हुआ होगा तो हमारे मन में वो चित्र हमारे मन को पकड़ रखता है। कहते ना, इनको किसी की पकड़ हो गई। किसी पीर फकीर के पास ले जाओ, वो इनकी पकड़ से पहले इनको छुड़ाए। बाबा कहते हैं, मैं भृगु ऋषि हूं, तुझे जो पकड़ है उस पकड़ से मैं तुझे छुड़ाने के लिए आया। तू किसी से घृणा करता है तो उस घृणा की पकड़ में आ चुका है। तो किसी से मोह ममता करता है तो उसकी मोह ममता की पकड़ में आ चुका है। तो किसी की तरफ आकर्षित होता है, उस आकर्षण की मोह पकड़ में आ चुका है। और किसी के प्रति तेरा मन में इतनी क्षुब्ध भावनाएं हैं कि तू उसकी पकड़ में आ चुका है। सब तरफ से मन को आज हटा लीजिए। कोई मेरा दुश्मन नहीं, कोई दुनिया का पदार्थ आकर्षक मेरे लिए नहीं, कोई मेरा अपना नहीं, कोई मेरा पराया नहीं, सब मेरे बाबा के हैं। उस बाबा को ही मैं केवल मात्र देखता हूं। तो इस समय सब तरफ से मन को हटाकर, मन हटेगा नहीं, मन को अपने स्वरूप में लगा लो। जब मन इधर से हटता है तो इधर लगता है, और जब लगता है तो हटता है। अब जरा आप देखो, देखना मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूं। आप आकाश में सितारे देखते हो, लेकिन अपने स्वरूप का सितारा देखिए दिखाई देता है। मैं समझती हूँ बहुत कम को दिखाई देगा, सबको नहीं देगा, क्योंकि हमारा मन बुद्धि किसी ना किसी की पकड़ में होता है। कोई चीजों के आकर्षण में, कोई चीजों के अपनेपन में, कोई चीजों की ममता में, कोई के नफरत और घृणा में। जब तक इन सब जगहों से मन हटेगा नहीं, मन आपका आपके स्वरूप को देख नहीं पाएगा। दाता को देखना तो दूर रहा, आप स्वयं को आज कोशिश कीजिए अपने दिव्य चमकते हुए उज्जवल स्वरूप को देखने की। मैं मस्तक के मध्य चमकता हुआ एक दिव्य सितारा, मैं चैतन्य शक्ति हूं, मैं आंखों द्वारा देख सकता हूं, कानों द्वारा सुन सकता हूं, मुख द्वारा बोल सकता हूं, टांगों द्वारा चल सकता हूं, मैं इन सब कर्म इंद्रियों से न्यारा एक वो शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। जो मस्तक के मध्य ब्रह्मपुटी के बीच विराजमान है, अपने इस दिव्य चमकते हुए उज्ज्वल स्वरूप को देखिए। बहुत शांत आपका स्वरूप है, आपके आसपास एक प्रकाश ही प्रकाश का प्रभा मंडल है। उस प्रकाश के प्रभा मंडल के मध्य आप चमकते हुए चैतन्य शक्ति दिव्य सितारा, मुझ चैतन्य शक्ति आत्मा के सर्व संबंध सर्वशक्तिवान दिव्य ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिवान प्यारे पिता परमात्मा से हैं। मैं एक हूं, मेरा एक है, मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। मैं शांति स्वरूप आत्मा, चारों तरफ शांति ही शांति। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा, मेरे चारों तरफ शक्ति ही शक्ति। चाहूं और शक्ति के मध्य, प्रकाश के मध्य मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा विराजमान हूँ। अपने पावन उज्ज्वल स्वरूप को देखिए, कितना मेरा निर्मल स्वरूप है। कितना शक्ति संपन्न मेरा स्वरूप है। अपने सत्य स्वरूप के अनुभव में कुछ समय के लिए हम सब बैठेंगे। केवल मात्र अपने चमकते हुए दिव्य प्रकाशित स्वरूप को देखिए। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मेरा स्वरूप है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और इस प्रकाश के मध्य में चमकता हुआ दिव्य प्रकाश। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा, सर्वशक्तिवान की संतान आत्मा विराजमान। हम सब चलते हैं इस देहों के जगत से दूर, प्रकृति तत्वों से परे, सूर्य चांद और तारागण से भी पार, अपने परम प्यारे पवित्र घर ज्योति देश में ये वो ज्योति देश है जहाँ सुनहरा सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश, चहुं ओर प्रकाश ही प्रकाश है। और इस प्रकाश के सुंदर शांत धाम में मैं दिव्य चमकता हुआ सूक्ष्म अति सूक्ष्म बिंदु रूप सितारा विराजमान हूँ। चारों तरफ प्रकाश और शक्ति की किरणें मुझ आत्मा से चारों फैल रही है। मैं अपने सुखद आनंदित स्वरूप में अपने ज्योति देश में विराजमान, कुछ समय के लिए हम सब अपने घर में अपने निजी धाम में अपने स्वमान और स्वरूप में स्थित हैं। सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कीजिए।
पांडव शिव शक्ति